हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिभे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवीति। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुण बिंब फला धरुष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। ब्रजेव संतम् नवनीत चोरम् गोपांगनानां चदुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्री कृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। जब अर्जुन द्वारिका से लौटे तो वो बहुत ज्यादा दुखी थे, और जब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे वो कुछ बोल नहीं सक रहे थे क्योंकि उनका गला रुद रहा था। वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग को इतना तीव्रता से महसूस कर रहे थे कि कुछ बोला नहीं जा रहा था। और इस स्थिति में जब उसने भगवान के साथ अपने संबंध को याद किया, भगवान की उन लीलाओं को याद किया, भगवान ने किन किन तरीकों से हमारी सहायता की थी, कौन कौन सी स्थिति में भगवान ने हमारे साथ मैत्रीय भाव रखा था, सखा भाव से किस किस प्रकार से, वो युधिष्ठिर महाराज को बताना शुरू कर रहे हैं। और भगवान के इस सानिध्य को याद करके उनके हृदय में कुछ हौसला हुआ है, कुछ हिम्मत आई है कुछ बोलने की। और पहली बात वो कहते हैं, यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रियदर्शन उक्तेन रहितो येष मृतकः प्रोच्यते यदा। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य अप्रिय दर्शन, वो कहते हैं वो भगवान जिसके एक क्षण का जब वियोग हो जाता है तो ये पूरा संसार दुखदायक लगता है। यही बात महाप्रभु बताते हैं। महाप्रभु कहते हैं शिक्षा अष्टकम के श्लोक नंबर 7 में, युगायितं निमीक्षेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत होता है, और नेत्रों से बारिश की तरह आंसू गिर रहे हैं, तथा सारा संसार शून्य सा व्यतीत हो रहा है। तो ये वास्तव में एक भक्त का लक्षण है। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं और वो कहते हैं यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रिय दर्शन, वो पूरा संसार जो कितना अच्छा लगता था भगवान के वियोग में, अब सब शून्य लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे एक शरीर बगैर प्राण के, अगर शरीर से जिस्म से जान निकल जाती है तो कैसा वो कांतिहीन हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। उसी प्रकार भगवान के जाने से ये पूरा जगत, मेरी पूरी दुनिया ऐसा लगता है उजड़ गई है। और इस तरह धीरे धीरे अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान ने किस किस प्रकार से हम पर कृपा की। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में भगवान की कृपा के कारण ही हम विजयी कर पाए हैं। और आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, जैसे आप सबने सुना होगा, जरासंध के साथ भीम का युद्ध हुआ था, और किस प्रकार से जरासंध और भीम का युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने कराया और पांडवों को विजय प्राप्त हुई, भीम को विजय प्राप्त हुई, जिसके कारण उनको बहुत सारे राजाओं ने सरेंडर किया और जिसके कारण उनकी बहुत ख्याति बढ़ी थी। तो ये इसको, इस प्रसंग को अर्जुन बता रहे हैं कि ये सब जो भी हमने युद्ध किया, जो हमने यश किया, जो हमने जीता, जो हमने विजय प्राप्त की, उसका कारण केवल कृष्ण है। कृष्ण हमारे साथ था तभी हम इतने बड़े बड़े राजाओं को जीत सके। जरासंध बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, हजारों राजाओं को वो अपने अंडर में रखता था, वो शिवजी की बलि देता था, बहुत सारे राजाओं को बलि करता था, और इस तरह से बहुत शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा। लेकिन उस जरासंध का वध किया भीम ने, वो किस तरह से किया वो श्री प्रभुपाद जी बताएंगे। और इसी बात को यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि ये हमने इसीलिए किया क्योंकि भगवान हमारे साथ था, और वास्तव में ऐसा ही था, कृष्ण उनके साथ थे तभी ये सब कुछ। वो अभी हम पढ़ेंगे, कृष्ण जब इनके साथ थे तो बड़े बड़े युद्ध जीते, और जब कृष्ण धराधाम से चले गए तो अर्जुन बिल्कुल निगरणीय बीलों से हार गए थे। तो ये सब हम पढ़ेंगे क्योंकि कृष्ण के ही कृपा से ही ये सब हो रहा था, इसलिए अर्जुन आज भगवान की कृपाओं को याद करके कहते हैं। यत्तेजसानि पशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गज युतसत्तवीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेति। यत्तेजसानि पशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गज युतसत्तवीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेति। यत्तेजसानि पशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गज युतसत्तवीर्यः तेनाहृता प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेति। यत् तेजसा मतलब भगवान का ही तेज था, ये भगवान का ही प्रभाव था जिसके कारण नृप शिरंग्रिय मतलब ऐसे जरासन के विषय में बता रहे हैं जिसके पांव तथा सिर राजाओं के सिरों से अलंकृत होते थे, ऐसा शक्तिशाली राजा अहन मारा हुआ। मखन अर्थ इसका मतलब है यज्ञ हेतु। अब वो सारे राजाओं को यज्ञ करने के लिए मख कहते हैं यज्ञ को, अर्थम ये सारे राजा जरासन ने यज्ञ में बलि देने के लिए रखे थे। आर्य कहते हैं सम्मानित श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को कहते हैं अनुज आपके छोटे भाई अर्थात भीम, अनुज कहते छोटे भाई को तब आपके गजयुत भीम जो है उसके 10,000 हाथियों का बल था, इसे उनको बोलते थे गजयुत 10,000 हाथियों के बल वाला। सत्व वीर्य यानी शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। और तेन आहृता, तेना मतलब उसके द्वारा भीम के द्वारा उसको वो यहाँ पर लिखा है प्रमथ नाथ भूतों के देवता महाभैरव, क्योंकि वो सारे राजाओं को महाभैरव को बलि देता था मखाय यज्ञ के लिए भूपा यानी कि सारे जो राजा थे वो। यत मोचिता तत अनयन, यत मोचिता जिसके द्वारा छोड़े गए तत अनयन वे सब लाए बलिम बलि के लिए अध्वरे भेंट किया ते तुमको, क्योंकि वो सारे बलि के लिए वहां पर आए थे और तुम्हारे छोटे भाई राज भीम ने उन सब के को बचाया, जरासिंह को मारकर उन सब राजाओं को बचाया तो वो सब आपकी शरण में आए और आपको प्रोटेक्शन ली, इसी के कारण आपको इतना सम्मान मिला। तो ये वास्तव में क्या है, यत तेजसा नृपश, यत तेजसा ये सारा श्रेय जो है वो भगवान को जाता है। वास्तव में भक्तों हमें आज तक जो कुछ भी मिला है ना, हम अपना कुछ नहीं लेके आए। अगर हम याद करें अपनी पिछली जीवन को, जब हम संसार में पैदा हुए थे हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज हम रोते रहते हैं भगवान आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हमें तो याद करना चाहिए उस समय को जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, भगवान ने हमें माता पिता दिए, भगवान ने हमें इतना सुंदर परिवार दिया, भगवान ने हमें इतना प्रेम करने वाले सब लोग दिए, भगवान ने इतना सुंदर घर दिया, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया। तो हमें सदैव याद करके भगवान का शुक्र करना चाहिए, भगवान का सदैव धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से मुझे कितना सब कुछ मिला है। आज का मनुष्य इतना अभागा है कि भगवान जो 10 चीजें उसके पास होंगी ना, लेकिन एक चीज नहीं होगी ना, वो चीज उसको याद आ रही होगी ये मुझसे भगवान ने छीन ली, लेकिन इतने सारी जो भगवान ने कृपाएं दी हैं वो उसे याद नहीं आएंगी। लेकिन आज अर्जुन भगवान को याद कर रहा है और कह रहा है भगवान की कितनी कृपा है, हमारे पास आज जो कुछ भी यश है वो सब भगवान की कृपा से है। अनुवाद देखिए, 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके भ्राता ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव के यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए गए थे, किंतु उनको छोड़ दिया गया। बाद में उन्होंने आपको यश प्रदान किया। श्री प्रभुपाद जी इस पूरी स्टोरी को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाएंगे। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और आनंद लेंगे। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी पहले जरासंध के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं जरासंध मगध का अत्यंत ही शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। अभी वो किस तरह से पैदा हुआ था उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसका पिता वृहदर्थ था, राजा मगध का अत्यंत ही संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की दो पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत ही प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से दो भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। कितनी हैरत की बात है। ये राजा जो मगध का राजा था वृहदर्थ, वो उसकी काशी की दो राजकुमारियों के साथ उसकी शादी हो गई। विवाह के बाद जब पुत्र नहीं हो रहा था तो वो जंगल में चला गया और एक ऋषि मुनि ने उनको एक आम दिया। अब एक आम से एक ही संतान उत्पन्न हो सकती थी, मगर एक आम को उन दोनों ने खाया, मिलके खाया, तो फिर क्या हुआ, दोनों को आधा आधा संतान पैदा हुआ। अभी आधा आधा बच्चा वो क्या करे, आधा बच्चा मूव नहीं कर सक रहा था, तो फिर उन्होंने समझा ये तो सिर्फ एक पीस ऑफ फ्लैश है, इसको क्या करें। तो फिर इसको क्या करते हैं, वो आगे बताते हैं, ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, क्योंकि अभी वो पुत्र तो नहीं था ना, चलता फिरता नहीं था, आधा पुत्र, पूरा का पूरा आधा था, जैसे एक टांग उस तरफ, एक टांग उस तरफ, एक हाथ उस तरफ, बीच से आधा हुआ था। तो फिर उसको जंगल में फेंक दिया गया। फिर क्या हुआ, जहां एक असुरिनी रहती थी, असुरिनी यानी कि वहां पर एक राक्षसी रहती थी, वह अत्यंत ही प्रसन्न हुई कि उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। अभी एक वहां से उठाया, एक वहां से उठाया, दोनों को ऐसे टच किया तो दोनों एक साथ जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो वो बच्चे की तरह मूव करने लगा, ऐसे आवाज निकालने लगा और अपना हाथ मुंह में डाला और रोने लगा। जब राक्षसी ने देखा खेड़े ये तो रो रहा है, तो उसको बहुत भय लगा कि ये क्या है, किंतु उत्सुकता के उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। वह असुरिनी जरा नाम से विख्यात थी, उस असुरिनी का नाम था जरा, और वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसने वह सुंदर बालक भेंट करके आई। उसने सोचा कि ये राजा का पुत्र है और राजा की कोई दूसरी संतान नहीं है तो मैं उसको दे देती हूँ। राजा उस असुरनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। उसने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा। जरा उस राक्षसी का नाम था और संध मतलब उसके द्वारा इसको संधि किया गया, मतलब जोड़ा गया, जिसका अर्थ है कि जरा नाम असुरिनी के द्वारा जोड़ा गया। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित नामक असुर के अंश स्वरूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया था वह चंद्रकौशिक कहलाता था। उस साधु ने जिसने आम दिया था ना, उसका नाम था चंद्र कौशिक। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि जन्म से ही जरासिंध में असुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूतों के स्वामी शिव जी का परम भक्त बना। अभी असुर लोग है ना, उनकी मेंटेलिटी वो विष्णु भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान ने भी भगवद गीता में बताया है कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो दुष्कृति है, जो मूढ़ है, जो राक्षसी स्वभाव के लोग है ना, वो मेरी भक्ति करते ही नहीं है, करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए भगवान ने एक तमोगुण का अवतार लिया है शिव जी, कि चलो भूतों प्रेतों राक्षसों को भी एक भगवान होना चाहिए। तो शिव जी राक्षस देखो आप दो भी होंगे ना, वो सारे शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी स्वयं महा वैष्णव हैं, परंतु उनके सारे भक्त ऐसे ही हैं उल्टे पुल्टे। तो ये जो जरासिंध था, जो कि ऐसे आधा आधा उत्पन्न हुआ था असुरी गुणों से, वो शिव जी का परम भक्त था। जिस प्रकार रावण शिव जी का परम भक्त था, इसी प्रकार जरासिंध भी था। वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं की महाभैरव, ये शिव जी का एक स्वरूप है, उसी के समक्ष बलि देता था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से अनेक छोटे छोटे राजाओं को हरा कर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि दे देता था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का परम शत्रु बन गया। अब बोलते ना, मेरे मित्र का शत्रु मेरा भी शत्रु, तो क्योंकि वो कंस का शत्रु था, सॉरी कंस का मित्र था, तो कंस जो था वो कृष्ण के शत्रु थे, इसीलिए वो भी कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। उससे कृष्ण का कोई शत्रुता नहीं थी, वो बस कृष्ण को इसलिए शत्रु मानता था क्योंकि कंस जो था वो कृष्ण को शत्रु मानता था। तो कृष्ण का वो भी है ना परम शत्रु बन गया। और जरासंध तथा कृष्ण के बीच में कई युद्ध हुए। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे, तो 7 बार जरासंध ने भगवान के इस मथुरा पर आक्रमण किया। और रोज क्या होता था, मतलब जब भी भगवान आक्रमण करते थे भगवान के ऊपर जरासंध, तो भगवान क्या करते थे, जरासंध की सारी सेना को हरा देते थे, सारी सेना को हरा देते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। फिर जरासंध क्या करता था, दूसरी बहुत सारी सेना जमा करता था, और जमा करके 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 वापस आक्रमण करता था। फिर भगवान क्या करते थे, सारी सेना को मार देते थे और जरासंध को छोड़ देते। एक बार बलराम ने पूछा, कृष्ण तुम जरासंध को मार क्यों नहीं देते, रोज रोज सेना लेकर आता है, आक्रमण करता है, रोज रोज सेना लेकर आता है, तुम उसको एक बार मार लो ना। कृष्ण ने कहा, उसको मार दूंगा तो बाकी सारे असुर बच जाएंगे ना। अभी मैं यहाँ पर आराम से बैठा हुआ हूँ, जरासंध क्या करता है, सारे राजाओं को जो असुरी स्वभाव के हैं, जो उसके साथ मित्रता करते हैं, उनको लेके आ जाता है, मैं उन सबको मारता हूँ, वापस से दूसरे सारे असुरों को, मैं यहाँ पर आया क्यों, है ना, विनाश है तो दुष्कृतम, इसीलिए तो आया हूँ कि असुरों को मारूं। अब एक एक असुर को मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, यहाँ पर मथुरा में मजा करता हूँ। और एक दिन जरासंध सारे राक्षसों को लेकर आ जाता है और मैं सबको मार देता हूँ। तो भगवान की भी अद्भुत कार्य है। एक बार क्या हुआ कि जरासंध ने जब 8वीं बार युद्ध के लिए आक्रमण किया, तो भगवान ने मथुरा ही छोड़ दी और अपने लिए द्वारिका नगरी बसा ली। भगवान को द्वारिका में जाना था और अपना एक नाम रणछोड़ राय अपना नाम प्रसिद्ध करना था, तो वो युद्ध छोड़कर चले गए। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं, भगवान कहते हैं जन्म कर्म समय दिव्यम, मेरे सब दिव्य हैं, लेकिन भगवान इस जरासंध को भीम के हाथों मरवाना चाहते थे। भगवान की ये भगवान की नेचर है, अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, भगवान का स्वभाव है, स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहते, वो अपने भक्तों को श्रेय। ये जरासंध ने बहुत सारे भगवान के ऊपर आक्रमण किए, लेकिन भगवान उसको मारने का श्रेय भीम को देना चाहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान और भीम और अर्जुन ये तीनों साधु बन के जरासिंध के पास गए और उससे कहा, देखो जरासिंध, अभी हम आपको युद्ध का न्योता दे रहे हैं। जरासंध तो इतना शक्तिशाली था, बोला मुझसे युद्ध करोगे तो हम काकड़ी जैसे हो सब। तुम्हारे साथ कृष्ण को बोला तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा ना तो समझो, मतलब वो साधु बन के आए थे, तो बोला मेरी वीरता का अपमान होगा। ये अर्जुन तो बच्चा है, इसके साथ क्या युद्ध करूं। चलो ये भीम जो है उसके अंदर थोड़ा पावर लग रहा है, मैं टक्कर युद्ध अपनी टक्कर के व्यक्ति के साथ करना चाहिए ना, तो मैं भीम के साथ युद्ध करता हूँ। तुम दोनों तो इस योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं। फिर उनका युद्ध हुआ। अभी श्रीला प्रभुपाद जी उसके बारे में आगे बताएंगे। यहाँ से देखिए कि वह कृष्ण का परम शत्रु बन गया और जरासिंह तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासिंध के सैन्य रूप में कार्य कर रहे हैं वे ना मारे जाएं। अतएव उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण के वेश में जरासिंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासिंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने के लिए कभी भी इनकार नहीं करता था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी। यह तय हुआ कि जरासिंध केवल भीम के साथ मल्ल युद्ध करेगा। मल्ल युद्ध नहीं, कुश्ती लगाते ऐसे युद्ध की। इस तरह वे सब जरासिंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंद्वी भी थे। भीम तथा जरासिंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। अभी जरासिंह बहुत ज्यादा युद्ध में शक्तिशाली था। भीम भले ही 10,000 हाथियों का युद्ध मतलब कर सकता था, उसके पास बहुत बल था, लेकिन जरासिंह भी कम नहीं था क्योंकि काल भैरव का वो भक्त था, तो हार ही नहीं रहा था। रोज रोज भीम जो है ना वो बिल्कुल गिर जाता था, अधमरा हो जाता था, जैसे तैसे करके वापिस से लड़ाई करना शुरू कर देता था। फिर भगवान ने एक बार उसे बताया कि किस तरह से उसको मारना है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासिंध को जोड़ा गया था। भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर करके मार डाला। अभी कृष्ण ने क्या किया, एक तिनका लिया, जो एक तिनका नहीं होता है, लंबा सा एक घास का तिनका लिया और उसको बीच से छीर के दिखाया। युद्ध हो रहा था दोनों में, बीच में बात कैसे करें, ऐसे करो ऐसे बोल तो नहीं सकते। भीम ने जब भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने एक तिनका चीरा बीच से और उसको फेंक दिया कि तुम ऐसे इसको चीरो और फेंक दो। तो फिर भीम ने भी ऐसे किया, टांग से पकड़ा और पूरा खींच के उसको फेंक दिया। तो फिर क्या हुआ कि वो दोनों वापस जुड़ गए, क्योंकि बचपन से ये जुड़ने का इसके अंदर थोड़ा लगा हुआ था फेविकोल, वापस से जुड़ गए। फिर वापस से उसने चीरा, वापस से फेंका तो वापस से जुड़ गए। फिर कृष्ण की तरफ भीम ने देखा कि भगवान क्या करूं, मैं इसको बार बार चीर रहा हूं और ये बार बार वापस से मिल जाता है, अब क्या करूं। तब कृष्ण ने एक दूसरा तिनका जो है ना उसको चीर के दिखाया, बोला ये वाला साइड उस तरफ फेंको और ये वाला साइड उस तरफ फेंको, फिर नहीं जुड़ेंगे। फिर उसने भीम ने ऐसे ही किया, उसको टांग से एक टांग के ऊपर पांव रखा अपना और दूसरे हाथ से उसको जोर से चीरा और एक जो उस साइड वाला है ना मतलब बीच में लेफ्ट वाला है जो वो राइट साइड पे फेंका, राइट वाला लेफ्ट साइड पे फेंका और इस तरह से उसका वध हो गया। और जितने भी राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे उन सबों को भीम ने छुराया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर को यश प्रदान किया। तो ये जो आज जरासिंध का वध हुआ, उसके केत में बहुत सारे राजा थे और जब वो पांडवों की कृपा से छूट गए तो फिर उन सब ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत यश प्रदान किया कि वो है ना उनका बहुत यशगान करने लगे। बहुत सारे राजा जो हैं वो युधिष्ठिर महाराज के कंट्रोल में आ गए, मतलब अब सारे उनके सहायता हो गए, उनका पावर बढ़ गया ना। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को ये बता रहे हैं कि आज हमारा जो यश है, जो बल है, जो शक्ति है, वो भगवान की कृपा से है, वो भगवान ही की कृपा से है। और आज भगवान इस धराधाम पे नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल गए हों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रिय साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।